ओम शांति। आज 2 मई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी सुनी और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे 4:30 बजे 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप चारों समय एक ही लिंक से रोजाना जुड़ सकते हैं, चाहे वो गूगल मीट का लिंक हो चाहे यूट्यूब लाइव का लिंक। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके पास कोई सुझाव है हम सबके हित में भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा। कैसे मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। एकांत किसे कहते हैं? सिवाय एक बाबा के मेरे पास कोई और नहीं। एक के अंत में बस एक मैं और एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा। मेरे संकल्प में यदि कोई और आत्मा आई तो वो एकांत नहीं। कोई संकल्प आया तो एकांत नहीं। संसार की कोई बात याद आई तो एकांत नहीं। लाखों की भीड़ में भी हम एकांत हो सकते हैं। हमें केवल बात की श्रीमत पर ही संकल्प कर रहे हैं, हम बात की डायरेक्शन पर वहां पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं और किसी का कहना नहीं मान रहे हैं, तो हम लाखों करोड़ों की भीड़ में भी एकांत। दुनिया वाले समझते थे एकांत का मतलब है कमरे में कोई भी ना। हम जंगल में चले जाएं जहां हमें देखने सुनने बोलने वाला कोई भी ना। हम किसी पहाड़ की कंदरा में चले जाएं जहां हमारे पास कोई और ना हो। बस वहां यदि मेरे पास रेडियो है, मेरे पास मोबाइल है, तो मैं तो सारी दुनिया के साथ हूं ना। मैं जब जिसको चाहता हूं मैं उससे बात कर लेता हूं, तो मैं एकांत में नहीं। बहुत अच्छी तरह से समझना है एकांत का मतलब है एक बात के सिवाय मुझे कुछ और दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, संकल्प ना चले, बोल नहीं हो और कर्म नहीं किसी भी और अन्य आत्मा से। ये 5 चीजें सिवाय परम पिता परमात्मा के और किसी के साथ हो रही है तो हम एकांत में नहीं। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, ये प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस करनी है और किसी की बात सुननी नहीं। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? वो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं ही, याद में हैं ही, लेकिन बाबा कहते वो सब गपोड़े, ये बाबा के बच्चे हम हैं तो बड़ा मारते झूठ बोलते। सवेरे सवेरे आज आते आते बाबा को गुस्सा आ रहा है, समझा रहा है इतने इतने टफ शब्दों में, वो गपोड़े मारते, बच्चे गपोड़े मारते, अलबेलापन है। इसमें तो पुरुषार्थ करना है, सवेरे सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी, ये नहीं सुनना है, मेरे साथ बात करनी है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, मेरे से अच्छा तुम्हारा कोई कल्याणकारी हो नहीं सकता, तुम्हें सिर्फ मेरे से रूह रिहान करनी है। आत्मा ने परमात्मा के साथ बात करने को कहा जाता है रूह रिहान। आत्मा ही बातचीत करती है, अब बाबा बोल सकता नहीं, कैसे बात करता होगा बाबा हमारे साथ, कैसे करेगा बातचीत, हमें कैसे समझ में आएगा कि बाबा हमारे साथ बात कर रहा है? ना मुंह है उसके, ना कान है जी, कैसे बात, आप बात करना किसी को आता है तो मुझे बताए। सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा कहता है उठकर मेरे साथ बातचीत करो, कोई बताए कि हम कैसे बातचीत करते हैं, हमें समझ में आ जाए ताकि सारे हम भी बातचीत करने लग जाए। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मुंह नहीं, हाथ हाथ नहीं, कुछ नहीं, कैसे हम उसके साथ बात करें, ना सुनता ना बोलता। हाँ जी, श्रीमत तो शाम को या दिन में हमने मुरली में पढ़ ली, हम तो चलो 4 बजे उठ करके मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु सारे सुनो मुरली पढ़ते हैं, फिर तो बाबा कहते उठ करके मेरे साथ रूह रिहान करे। बोला बाबा बोलेगा तो नहीं ना, मैं उससे कहूंगा उसका वो जवाब कैसे देगा? हाँ जी, अच्छा बाबा ने जो पहले बता रखा है हमने उसी के आधार पर अपने आप समझ लेना है, बाबा बोलेगा नहीं, ठीक है, बाबा बोलेगा नहीं, मुंह नहीं है ना कैसे बोले, मैं वही सोच रहा था। हाँ, दूरी आन कैसे करे, मतलब उसने जो पढ़ाना था जो बताना था वो बता दिया, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बाबा ने अब तक हमें ना बताई हो। यदि आपको लगता है कि बाबा ने इस पर कोई बात हमें बताई नहीं है, इसका डायरेक्शन हमें नहीं मिला है, तो बाबा कहते मेरी मुरली उठाओ और उसके अंदर पढ़ो, आपको उसका जवाब मिलेगा, कोई देश की मुरली उठा लो। परंतु आप अपना प्रश्न बुद्धि में रख के उस मुरली को पढ़ेंगे तो आपकी बात का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये है रूढ़ियान करना। मतलब हमने अपनी सारी दुनिया की जो भी समस्याएं मेरे सामने हैं, जो भी विघ्न मेरे सामने हैं, उन विघ्नों का समाधान बाबा के साथ बैठकर बाबा की श्रीमत के अनुसार करना। ये नहीं कि बैठे तो हम बाबा के पास है, परंतु कर अपने मन की रहे, सोच अपने मन की रहे, तो भी वो एकांत नहीं होगा, तो भी वो बाबा का साथ नहीं होगा। एक बाबा के साथ है तो एकांत। मैं यदि किसी और आत्मा के साथ हूं तो वो भी एकांत नहीं होगा। मैं बैठ करके किसी और के बारे में सोच रहा हूं, सिर्फ एक ही आत्मा के बारे में सोच रहा हूं, एक ही आत्मा से मैं अपना समाधान ले रहा हूं, तो भी वो एकांत नहीं होगा। एक बाबा के साथ बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करना, बाबा एक बाबा की श्रीमत के अनुसार ही केवल अपनी समस्याओं का समाधान करना, ये है एकांत, ये है सही तरीका रूढ़ियान करने, ये है योग, ये है याद की यात्रा, जिसके आधार पर हम अपने आप को सुधार रहे हैं। क्योंकि और किसी की कहने पर हमने अपने आप को नहीं सुधारना, अपने आप को परिवर्तन नहीं करना। और यदि ये निरंतर सारा दिन चल जाए तो ये भट्टी है, सारा दिन नहीं तो कुछ देर तक भी आग जल जाए, ये सिर्फ बाबा के सिवाय हमने और किसी की बात नहीं लेनी, तो ये भी भट्टी हो जाएगी। हमने किसी एक आदत को बदल दिया बाबा के डायरेक्शन पर बैठकर, ये भट्टी हो गई। और हम चार दिन बैठे रहे और हमने एक भी छोटी सी बुराई को काटा नहीं, बुराई को जलाया नहीं, कोई भट्टी नहीं हुई। पांच दिन वेट, वो भट्टी नहीं थे। मेरा जीवन में एक भी दाग मिट गया, वो दाग मिटना, ईंट का पकना, ये भट्टी है। ये बहुत अच्छी तरह हमने अपनी बुद्धि के अंदर रखा। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, आत्मा अभिमानी बैठ बनते हो, देही अभिमानी बच्चे ही याद का चार्ज रखे, वो अपने सुधार को देखेंगे कि मेरे में रोजाना कितना सुधार आ रहा है। चार्ज रखना माना अपने सुधार को चेक करना कि मेरे में कितना सुधार आ रहा है, चाहे आप पेपर पर लिखे या नहीं लिखे, आपके अंदर सुधार आ रहा है रोजाना, आप अपने सुधार को चेक कर रहे हैं तो आप चार्ज रख रहे हैं। सिर्फ ज्ञान की लबार नहीं लगाएंगे। ज्ञान की लबार क्या होता है? हाउ टू बातें, ये बातें, ये 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 ज्ञान की ढेर सारी बातें सुनाते रहना, वो बाबा के चल लबार है। लबार बोला जाता है जो हाउ टू बोलता रहता है, जिसको जिन शब्दों को, जिन वाक्यों को बोलने की जरूरत में वो बोलना माना लबार। उतना बोलो जितना बोलने की जरूरत है, उसके बाद साइलेंस। उतना सोचो जितना सोचने की जरूरत है, उसके बाद साइलेंस। यदि हम वो सोच रहे हैं जिसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो बोल रहे हैं जो बोलने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं जो करने की जरूरत नहीं है, तो वेस्ट में चला जाता है या नेगेटिव में चला जाता है। कितनी कितनी पाबंदियां लगाता है बाबा हमारे ऊपर, सवेरे सवेरे बताओ, लगाने देंगे पाबंदी, स्वीकार करें इतनी पाबंदियां? फायदा होगा ना हमारा, स्वीकार ठीक। एक स्वीकार है, मैं एक मुझे पता नहीं जैसे मैंने कहा स्वीकार है, वह याद आया बाबा कहते, बाबा का कहना सिर मथे आगे परनाला उठे दाऊ। बाबा ने जो कहा ठीक है हमें स्वीकार है, पर तो हमने करना वही है जो हमने कर, ये नहीं होना चाहिए। मुखड़ा देख ले प्राण दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। रूहानी बच्चों को समझाया गया है कि प्राण आत्मा को कहा जाता है, अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, ये गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, ये तो सिर्फ इनका सार समझाया जाता है। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझो, देह का भान छोड़ देना है। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं, मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ, ये आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, ये बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, मैं छोटी आत्मा हूँ। आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए, ये है मेहनत। हम आत्मा इस सारे नाटक के एक्टर हैं, हम आत्माएं सारी की सारी इस सारे नाटक के क्या हैं, एक्टर्स हैं। ऊंच से ऊंच एक्टर है कौन है, सबसे ऊंचे से ऊंचा एक्टर शिव बाबा, जिसे कहते हैं परम पिता परम आत्मा। बुद्धि में रहता है वे भी इतनी छोटी बिंदी, वे भी इतनी छोटी बिंदी, या परम पिता परमात्मा सबसे ऊंच एक्टर है। कितने साल के लिए पाठ बजाने आता है, 100 साल। और कृष्ण कितने समय के लिए पाठ बजाने आता है,
4999 साल
के लिए। कृष्ण से लेके शुरू से लेके लास्ट तक ये आत्मा पाठ बजाने आती है, वो हीरो है, वो इस फिल्म का क्या है, हीरो। हीरो उसे कहा जाता है जो आदि से अंत तक पाठ बजाता है, सारी कहानी जिसके चारों ओर घूमती रहती है। तो बताओ शिव बाबा का पाठ बड़ा है या कृष्ण का पाठ, हीरो वो है क्या? शिव बाबा को हम हीरो कह सकते हैं? हीरो के लिए एक बात सबसे बड़ी होती है, जब हम ये कोई भी उपन्यास पढ़ते थे तो हमें उपन्यास में डिसाइड करना होता था कि इसमें हीरो किसको रखा जाए, वह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, ये भी हीरो हो सकता है, ये भी हीरो हो सकता है, ये भी हीरो हो सकता है। तो वहां पर ये कंडीशन होती थी कि जिसके चारों तरफ सारी कहानी घूमती रहे वो हीरो होगा। सारे संसार के नाटक में सारी कहानी किसके चारों ओर घूमती है, बाबा। अरे ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन, चाहे बाबा वहां है या नहीं है, चाहे बाबा पाठ बजा रहा है या नहीं बजा रहा है, पर तो सारी कहानी आदि से अंत तक कृष्ण वशु बाबा के ही परमात्मा के चारों तरफ घूमती रहती है। वहां पर जो कुछ भी वो कर रहे हैं परमात्मा डायरेक्शन पर कर रहे हैं, परमात्मा डायरेक्शन भूल गए हैं तो उसको ढूंढना शुरू कर दिया है, और जब वो मिल गया है तो वापस उसने उनको अपनी उसी अवस्था तक पहुंचा दिया। बेशक पाठ बजाने के लिए थोड़ा समय के लिए आते हैं, परंतु केंद्र बिंदु जिसके चारों तरफ सारी स्टोरी घूमती है, किसी के चारों तरफ कहानी घूमेगी तो केवल भारत की घूमेगी, और दूसरे देशों में दूसरे स्थानों पर कृष्ण की स्टोरी रुक जाएगी। परंतु परमात्मा चाहे वो भारत के अंदर रहने वाले हैं, चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हैं, उन सब की कहानी परमात्मा के चारों तरफ घूमती है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे?
का पाठ भी मगर घूमता नहीं है, उसकी क्या रुचि?
हाँ, कृष्ण का पाठ सिर्फ भारत में है, भारत में उसके चारों तरफ घूमेगा, परंतु दूसरे देशों में तो कृष्ण को कोई नहीं जानता। इसलिए दूसरे धर्म वाले उनके चारों तरफ नहीं घूमे, और भारत के अंदर भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, इसलिए सारी कहानी कृष्ण के चारों तरफ नहीं घूम सकती, जबकि वो शुरू से लेके लास्ट तक पाठ बने। इसलिए चालाकी से शिव बाबा ने अपना नाम हीरो का भी रखा, जैसे मैं हूं हीरो एक्टर, मैं हूं प्रिंसिपल एक्टर। अपने लिए देखा कितने चुन चुन के नाम रखे हैं, मैं हूं इस नाटक का डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर, सारे अपने पास रखे। कोई ऊपर कोर्ट है नहीं ना, जहां कुछ हम मुकदमा डाले कि कुछ तो हमारे को दे दो भाई, सारा काम अपने सिर पर ले लिया। फिर करता कुछ है जी, हाँ, करता कुछ भी नहीं, अब आराम से सोया रहता है। क्या करना, कुछ करना नहीं है, वो भी ड्रामा अनुसार एक्यूरेट टाइम पर अपना पार्ट बजाने आ जाते हैं। ये खुशी होती है कि ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, तो नहीं तो होड़ लग जाती, जिद हो जाती कि हम ड्रामा को चेंज करते, वो चेंज नहीं करते। बुद्धि में रहता है, वे भी इतनी छोटी बिंदी है, उनकी महिमा कितनी भारी है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु है छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं सकते। ये नई बातें अभी तुम सुन रहे हो, दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं, और बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा छोटी बिंदी है, हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंच से ऊंच एक्टर बाप है। फिर फलाने फलाने आते हैं, तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके, शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके, शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। आज शरीरी होने से आर्जन अलग हो जाते हैं, भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरण करते हैं, देहधारियों का ही सिमरण करते हैं, परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते, परमपिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को ही नहीं जानते, बस कह देते परमात्मा नाम रूप से नारा है। बाप सब जाते हैं ड्रामा अनुसार, तुम जो नंबर वन सत्व प्रधान थे, तुमको ही फिर सत्व प्रधान बनना है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर ये अवस्था मजबूत रखनी है कि हम आत्मा है, आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती है, उनमें ज्ञान है, ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में नहीं है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है। ये बहुत नई नई पॉइंट्स है, एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी है। हम आत्मा हैं, बाप से सुन रहे हैं, धारणा मुझ आत्मा में होती है, मुझ आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये अंदर घोटना चाहिए, ये अंदर घोटना चाहिए। हमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, हमको तमो प्रधान से क्या बनना है, सत्व प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान नहीं, कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार कितना है, ये भी ये है ही तमो प्रधान दुनिया, ऊंच से ऊंच परमात्मा तो कोई भी है नहीं। तुम जानते हो अब हमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, इस बात को अंदर में घोटना है। ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, परंतु याद है नहीं। अंदर में वे अंतर्मुखता रहनी चाहिए। हमको बाप की याद से पति से पावन बनना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। इस पर एक पंडित का मिसाल भी है, माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबारी नहीं बनना है। ऐसे बहुत हैं, समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए। हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते, ज्ञान की बहुत लबार मारते रहते हैं, गप बे मतलब की पता नहीं क्या क्या बताते रहेंगे। योग है नहीं, और बड़ों बड़ों को ज्ञान देते हैं परंतु योग में करते हैं। सवेरे उठ बाप को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो, कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है, कोई भी ये राज नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है, हम भी ऐसे थे, माया के राज्य में कितना दुर्दशा हो जाती है। ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो, बोलो तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो, तुम्हें सतो प्रधान बनना है, पहले तो अपने को आत्मा समझो। गरीबों के लिए और ही सहज है, सौकारों के तो लफड़े बहुत रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत अमीर। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनो, बाकी तुम्हारे गंदे आदि में छिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए हैं। तुम तो बुलाते ही हो पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। ये ब्रह्मा खुद भी कुछ नहीं जानते थे, एक्टर होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उन्हें क्या कहेंगे, वो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा इस सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, ये भी कोई जानते नहीं, बल कह देते हैं आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं कहते। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो हम आत्मा मूल वतन के रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं, ये तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं, देह अभिमान के कारण सिर्फ मिस्टेक्स भी बहुत होती है। मूल बात है ही देही अभिमानी बनना, ये पुरना रहना चाहिए। हमको सत्व प्रधान बनना है, जिन बच्चों को सत्व प्रधान बनने की ताक लगन है उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेगी। कोई भूल हुई तो झट बाप को रिपोर्ट करेंगे, बाबा हमसे ये भूल हुई क्षमा करना, छिपाएंगे नहीं। छिपाने से वे और ही वृद्धि को पाती है, बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे। तुम्हारा योग ठीक नहीं, पावन बनने की ही मुख्य बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्मों की कहानी है, जितना हो सके बस यही चिंता लगी रहे, सत्व प्रधान बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम हो राज ऋषि अर्थ योगी, कभी राज योग सिखला नहीं। राज ऋषि किसे कहते हैं, राजयोगी, राज ऋषि, ऋषि कहा जाता है पवित्र, पवित्र राजा, और दुनिया वाले क्या है, हठ योगी। वो शरीर के साथ हट करते हैं, इतनी देर तक अकड़ कर बैठे रहेंगे, पानी में खड़े रहेंगे, एक टांग पर खड़े रहेंगे, उल्टे लटके रहेंगे, तेज चारों तरफ आग जलाकर, धूप के अंदर चारों तरफ आग जलाकर उसके बीच में बैठ जाएंगे। मतलब कहने आग चारों तरफ आग लगी हुई है, ऊपर से सूरज की आग लग रही है, वो पांच आगों में हर चारों तरफ आग और सूरज की आग और गर्मी का टाइम दोपहर का टाइम और उसके बीच में बैठ करके वो तपस्या करते हैं। क्या तपस्या लगती होगी, क्या ध्यान लगता होगा, क्या याद आता होगा, हाँ जी कैसे भी बैठे वो अलग बात है, सावधान बैठे। हमने देखा है उनको, मतलब हम छोटे बच्चे थे तो हमने देखा कि वहाँ एक आया हुआ था और उसने चारों तरफ कुकलों की आग लगा दी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, मतलब देखो उसको ना वो ना जले, मतलब दूर दूर चारों तरफ से आग लगा दी, मतलब उसका तेज तो आ रहा है और धूप का टाइम गर्मी का टाइम और उससे वो बैठा था, वो तीन चार घंटे वो बैठता था जो भी टाइम, मतलब क्योंकि हमने तो देखा उसको बैठे हुए, तो उसके बाद वो फिर सत्संग करता था, उठ के आता था वहां से फिर सत्संग करता था। सारे वहां बाहर बहुत बड़े तपस्वी, बहुत हम तो आज धूप में नहीं बैठ सकते और ये तो धूप में बैठा और कपड़े नहीं, मतलब मतलब थोड़े से कपड़े तो ज्यादा कपड़े नहीं, मतलब सारा शरीर भी नंगा, सब कुछ नंगा, मतलब एकदम मतलब तपस्वी जैसे, मतलब तो बच्चा बहुत तप कर रहा है, बहुत तप कर रहा है, मतलब एक चारों तरफ ढिंडोरा पिट गया कि बहुत तपस्वी है और वो आए हुए हैं, बहुत तपस्वी है। और फिर उनके ऊपर पैसों की हठयोगी कभी राजयोग सिखला ना सके, राजयोग बात ही सिखलाते हैं। ये राजयोग पूरी दुनिया के अंदर इस बात को सभी जानते हैं कि राजयोग परमात्मा के सिवाय कोई सिखा नहीं। सहज योग, वो एक माता है निर्मला, निर्मल माता, वो सहज योग सिखाती है, राजयोग कोई नहीं सिखा, सिवाय बाप के कोई सिखला नहीं। ज्ञान भी बाप ही देते हैं, बाकी इस समय तमो प्रधान भक्ति है, ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर देते हैं, सुनाते हैं, बाप आए ही हैं भक्ति खत्म कर, बाप क्या करने आए हैं, भक्ति को खत्म करने के लिए आए। बताओ ये अच्छे है कि खराब है, सारी दुनिया भक्ति कर रही है और बाबा आए हैं भक्ति को खत्म करने। क्या कहा जाता है भक्ति को, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अज्ञानता, भटकना। हाँ जी, पवित्र राजा, ऋषि माना पवित्र, बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है, ये दुनिया भी खत्म हो जानी है, ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है, ज्ञान और योग से सतयुग की स्थापना होती है। भक्ति चीज ही अलग है, भक्ति चीज ही अलग है, मनुष्य फिर कह देते दुख सुख यहाँ ही है। अभी तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना कल्याण करने की युक्ति रखते रहो, ये भी समझाया है। पावन दुनिया है, शांति धाम और सुख धाम, ये है अशांति धाम, दुख धाम। पहली मुख्य बात है योग, योग नहीं है तो ज्ञान की लबात है। सिर्फ पंडित माते आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकाली है, इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित हैं, बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, पावन तो कोई यहाँ है नहीं, है ही नहीं, ये तो अपने को ही भगवान कहते नहीं, ये तो कहते हैं मैं भी पतित हूँ, पावन होंगे तो फरिश्ता बन जाएंगे, तुम भी पवित्र फरिश्ता बन जाएंगे। तो मूल बात यही है कि हम पावन कैसे बने। याद बहुत जरूरी है। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वे कहते हैं हम शिव बाबा के तो बच्चे हैं, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते ये सब कपोड़े अलबेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाना है, रूह रिहान करनी है, आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना, वे होती है देह की महिमा। ये तो है निराकार परम पिता परम आत्मा की महिमा, इसको भी तुम समझते हो। ये सीरी और कोई की बुद्धि में थोड़े ही होगी। हम चौरासी जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं, अब तो पाप का गड़ा भर गया है, वे साफ कैसे हो। इसलिए बाप को बुलाते हैं, तुम हो पांडव संप्रदाय, रिलीजो भी पॉलिटिकल भी। रिलीजो मतलब धार्मिक रूप से भी और पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक रूप से भी। पांडव संप्रदाय, तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडव किसे कहते हैं, पांडव संप्रदाय, पांडव किसे कहते हैं, जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, जिनकी और किसी से प्रीत नहीं, जिनकी दुनिया में किसी से प्रीत है, जिसको कोई दुनिया वाला प्यारा लगता है तो समझ लो कि उसे परमात्मा से प्रीत नहीं है। बाबा सब रिलीजन की बातें समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके, क्योंकि सब धर्मों का पिता है ना, सब धर्मों की स्थापना करने के निमित्त है ना, इसलिए वो सब धर्मों की बातें समझाते हैं, दूसरा कोई समझा ना सके। बाकी वे धर्म स्थापना करने वाले क्या करते हैं। हाँ जी,
पांडव संप्रदाय का दोबारा मतलब बता दें।
पांडव बाबा ने आके समझाया, पांडव हैं वो बच्चे जिनकी परमात्मा से प्रीत है, कौरव हैं वो बच्चे जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि हैं, जिनको परमात्मा से प्रीत नहीं है वो विपरीत बुद्धि हैं, वो हैं कौरव, और तीसरा वो है यादव जो विज्ञान बुद्धि हैं, जो ये मूसल बनाते हैं, क्योंकि पांडवों का हमारे शास्त्रों में लिखा है उनके पेट से मूसल निकले वो मर गए, सारे के सारे पांडव मर गए। युद्ध हुआ या कौरव मर गए पहले, फिर पांडव भी मर गए युद्ध में, पांच पांडव बचे थे और वो पांचों पांडव भी पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते गलकर मर गए। उसके बाद बाकी बच गए थे यादव, उसको भी कृष्ण जब द्रौपदी से गांधारी से मिलने जाता है तो गांधारी कहती है हे कृष्ण, तू चाहता तो इस युद्ध को रोक सकता था, तूने युद्ध नहीं रोका ना, तू मेरे दोनों कुलों के नाश करने का जिम्मेवार है, इसलिए मैं सती, मैं पतिव्रता तुम्हें श्राप देती हूँ। कृष्ण को श्राप दिया उसने, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सारा युद्ध वंश भी नाश हो, और यादवों के पेट से मूसल निकले वो सारे मर गए। कृष्ण भी पैर पर टांग पर घुटने पर पैर रख के लेटा हुआ था, उसको हिरण का मुंह समझकर बैलिये ने तीर मारा, कृष्ण भी मर गया, सारे युद्ध वंश का नाश हो गया, पांडवों का नाश हो गया, कौरवों का नाश हो गया। तीन प्रकार के आज मनुष्य हैं और तीनों के तीनों सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अब खत्म हो जाएंगे। अब वो विनाश का टाइम आ गया है जब ये तीनों खत्म हो जाएंगे। बाकी कोई महाभारत लड़ाई ऐसी नहीं होती जिसमें कौरव और पांडव आपस में लड़े। तो आज के टाइम में विपरीत बुद्धि है वो सारे हैं कौरव, विपरीत बुद्धि है वो सारे हैं पांडव, और जो विज्ञान बुद्धि है वो है यादव। सभी को बाबा एक साथ घर लेकर जाएंगे, सभी आत्माओं उनके पिछाड़ी तो औरों को भी नीचे आना पड़ता है, बाकी वे कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं। बाकी पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए, सबको पवित्र बनाए वापस ले जाए, चाहे वो कौरव है चाहे वो पांडव है तो चाहे यादव। इसलिए एक के सिवाय और कोई की महिमा, इसलिए शिव बाबा के सिवाय किसी की महिमा, इसलिए सारे उस गॉड को पुकारते हैं, ओ गॉड लिबरेटर, हे भगवान हमें मुक्ति दो। चाहे धर्म कोई हो, पंथ कोई हो, मत कोई हो, पुकार सभी उस परमात्मा को रहे, सिवाय और कोई, एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं, ब्रह्मा की वा तुम्हारी कोई महिमा नहीं। ऐसा होना चाहिए बात, वरना बच्चों से काम कराना होता है, बच्चों को मक्खन लगाना होता है, मेरा राजा बेटा, मेरा अच्छा बच्चा, मेरा मीठा बच्चा, ये तो सारे काम करके आने वाला बच्चा है, दौड़ दौड़ के काम। आज बाबा को हमारे से काम करवाने का मन नहीं है, वो हमें डांट लगा रहा है, मैं चेहरे से देख रहा हूँ, प्यार की कोई बात ही नहीं। आज कहीं क्या बोलते हैं, अब स्कूल में तो कहते हैं कि घर वाली ने तंग किया होगा, ये हमको है ना मास्टर देना, स्कूल में आके गुस्सा करता है, या टीचर लेडी टीचर है तो पति ने मारा होगा इसलिए छिट्टी हुई पड़ी है, मारने लग रही है बच्चों को। अब यहाँ की इसको किसने तंग किया होगा जो हमें जो है ना चेहरे से डांट लगाए जा रहे हैं, तो इनके पास भी तंग करने वाला क्या क्या करें अब बाबा को। आज उनके काम करवाने का एक भी बात नहीं कर रहा, प्यार वाली बात कर ही नहीं रहा, हमारी कमियां ही कमियां निकाले जा रहे। तुम्हारी कोई महिमा नहीं, हमारी कोई महिमा नहीं, बताओ ब्रह्मा बाबा की कोई महिमा नहीं, जिसके शरीर में किराएदार है उसकी भी कोई महिमा नहीं, हमारी भी कोई महिमा नहीं, रोज आना इतनी मेहनत करते हैं, सारी मेहनत कर पाने के लिए। हाँ जी आज मूड खराब है बाबा का, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते, और कोई है नहीं जिसके पास जाए, माफी भी नहीं है। ठीक, बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते बताओ, हम क्या करते, कुछ नहीं करते, तुम भी क्या करते। अब बाप तुमको चरती कला में ले जाता है, गाते भी हैं तेरे पाणे सर्व का भला, नानक नाम चरती कला तेरे पाणे सर्व का भला। नानक ने कहा परमात्मा का नाम याद करने से तुम्हारे अंदर चरती कला आएगी, तुम्हारे में सुधार आएगा, परमात्मा को याद करेंगे तो तुम्हारे में सुधार आएगा जिससे सबका भला होगा। परंतु हमने वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु खूब किया, या भक्ति मार्ग में किसी भी इष्ट देव का नाम खूब जाप किया, परंतु हमारे में कोई सुधार आया नहीं। क्यों? क्योंकि याद करने का मतलब ही गलत मान लिया, याद करने का मतलब समझ गया नाम रखना, नाम जपना, जबकि याद करने का मतलब है बाबा की मत पर चलना। जिसको हम याद कर रहे हैं आप उसका कहना मान रहे हैं, क्योंकि हमें उससे प्यार, जिससे प्यार होता है उसको याद किया जाता है, और प्यार का सबूत होता है कहना मानना। तो याद करने का मतलब है परमात्मा से प्यार करना, परमात्मा का कहना मानना, ना कि उसका नाम रखना। परंतु अर्थ थोड़े समझते हैं, महिमा तो बहुत करते हैं। अब बाप ने समझाया है अकाल को आत्मा, अकाल को न आत्मा है, उनका ये तत्व है आत्मा अविनाशी है, काल कभी खाता नहीं, आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है, लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है, तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं होता। शरीर छोड़कर दूसरा पाद बजाने गया, रोने की क्या दरकार है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये भी तुम अभी जानते हो। डाटे हैं आत्माएं परमात्मा, अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला चला। बाप कहाँ आकर मिलते हैं ये भी नहीं जानते। अभी तुमको हर बात की समझानी मिलती है, कब से सुनते ही आते हो, कोई किताब आदि थोड़े उठाते हैं, सिर्फ रेफर करते हैं समझाने के लिए। बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते हैं, सच बताते हैं, सच से जीत झूठ से हार, सच्चा बाप सच खंड की स्थापना करते हैं। रावण से तुमने बहुत हार खाई, ये सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन हो रहा है, फिर ये सब होंगे नहीं। ये तो सब पीछे आए हैं, ये सृष्टि चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे हैं वो इसमें खुश नहीं होंगे। हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मैनर्स भी धारण करेंगे। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना चाहिए। पवित्रता पर भी कितना हंगामा होता है, वे भी ड्रामा अनुसार होता है। ये बना बनाया ड्रामा है ना, ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं। मेहनत करनी है, देवताओं मिसल दैवी गुण धारण करने, दैवी गुण धारण करने हैं, लूण पानी नहीं बनना है। देखना चाहिए हम उल्टी चलन चलकर बाप की इज्जत तो नहीं गवाते हैं। सत गुरु का निंदक छोड़ ना पाए, ये तो सत बाप है, सत टीचर है। आत्मा को अब स्मृति रहती है, बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूँ, तब तो गायब होता है, इनकी आत्मा में कोई ज्ञान था क्या? आत्मा क्या ड्रामा क्या, आत्मा क्या ड्रामा क्या है कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्यों को है ही है ना, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो आत्माओं की पूजा करते हैं, उनकी पूजा अच्छी व देवी शरीरों की पूजा अच्छी। ये शरीर तो पांच तत्वों का है, इसलिए एक शिव बाबा की पूजा ही अव्यभिचारी पूजा है। अभी उस एक से ही सुनना है, इसलिए कहा जाता है हियर नो इवे, ग्लानी की कोई बात ना सुनो, मुझ एक से ही सुनो। ये है अव्यभिचारी ज्ञान। मुख्य बात है जब देह अभिमान टूटेगा तभी तुम शीतल बनेंगे। बाप की याद में रहेंगे तो मुख से भी उल्टा सुल्टा बोल नहीं बोलेंगे, वो दृष्टि नहीं जाएगी, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, बाप ने आकर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाया है। अब तुमको तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे किसी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ नंबर एक, ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने आप से रू रिहान करनी है, पावन बनने की युक्तियां निकालनी है, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान वायरलेस टैग द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस वॉइसलेस माना पाप रहित विकार रहित निर्विकारी विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए निर्विकारी बुद्धि चाहिए क्योंकि बुद्धि में विकार होगा अच्छी बात भी हमें गलत असर होगी गलत स्वीकार क्योंकि बुद्धि ने स्वीकार कर बुद्धि विकारी है बुद्धि गंदी है बुद्धि में गंदे विचार हैं अच्छी बात भी गंदी लगे इसलिए निर्विकारी बुद्धि हो जिस बुद्धि में कोई भी विकार ना हो तब मन जब कोई भी चीज भेजेगा तो वो उसका सही निर्णय करे और बुद्धि विकारी होगी तो उसका निर्णय भी विकारी ही होगा जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं जहां है वॉइसलेस की वायरलेस निर्विकारी अवस्था की वायरलेस बेतार वायरलेस बोले जाता बिना तार के बेतार इस वॉइसलेस की बेतार निर्विकारी बेतार बिना तार के हमारा कनेक्शन है जिसको भी हम जो संदेश देना चाहें दे सकते और जो संदेश लेना चाहें ले सकते इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ नोट करना इस लाइन को ये लाइन आ गई है नोट करने वाली ऐसे कुछ के जेना रख के चला जाता है लाइन बहुत दिनों से मैं इस लाइन को ढूंढ रहा था आपकी अवस्था कैसी होगी निर्विकारी होगी किनकी होगी निर्विकारी जो तत्व प्रधान बन गए इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस शेष स्थान पर पहुंच जाओ जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है नोट करना ये बहुत दिनों के बाद मेरे सामने मुरली आई है जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है वे विनाश में विनाश नहीं होंगे लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे दिली समझ में आई है ये लाइन सुनाई नहीं दिया तो आप तो भाई समझ में आई है कि मैं फिर दोबारा पढ़ूं ये कृष्ण के लिए है ये उन आत्माओं के लिए है जिनका शरीर सुरक्षित रहना है ध्यान देना मैं इस लाइन को बहुत समय से ढूंढ रहा था ये आज मेरे सामने आ गई है देखो कैसे बाबा कहते हैं जैसे वे लोग वायरलेस टैग द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं बेतार की तार ये टेलीफोन की बात कर रहे हैं इसमें कोई तार नहीं है इसको बेकार कहा जाता है तो इस वायरलेस द्वारा कौन सी वायरलेस द्वारा वॉइसलेस की वायरलेस निर्विकारी आपकी जो निर्विकारी बुद्धि होगी तो इस बेकार इसके द्वारा जो आप मैसेज देंगे संदेश देंगे इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा टेलीफोन आएगा बिना टेलीफोन के क्योंकि आपकी बुद्धि निर्विकारी है ना उसमें विकार है ही नहीं तो आपको आपकी बुद्धि पवित्र है तो आपको मैसेज आएगा आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ ये बंकर तुम्हारे लिए तैयार है बंकर शब्द नहीं लिखा बाबा ने क्या लिखा है सेफ स्थान पर पहुंच जाओ जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, निर्विकारी हैं, जिनकी बुद्धि में जरा भी विकार नहीं है, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, दूसरी बात वे विनाश में विनाश नहीं होंगे लेकिन स्वयं इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। इससे आप और क्या बताएगा बाबा? ये कृष्ण के साथी जो जिनके शरीर सुरक्षित रहने हैं वो अपने शरीरों को सुरक्षित रखेंगे, वो तीर्थ स्थान वो बनकर होंगे जहां वो उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। कोई डाउट है तो पूछो। नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ो। बाबा ने बहुत बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि कैसे उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। ऐसे चुपके से एक लाइन छोड़ के चला जाता है बाबा। अब इन लाइनों को कहां इकट्ठा करें? निकल जाती है मुरली। स्लोगन, योग को किनारे पर कर्म में बिजी हो जाना यही है अलबेला का। अब ये लाइन वरदान में कही है, मुरली में भी कहीं ना कहीं हो। योग को किनारे पर कर्म में बिजी हो जाना यही अलबेला पद है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक व्रता बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का कर लो। वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना हो, दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में व फरिश्ता रूप में देखो। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो और सुख लो, और कोई दुख दे गाली दे इंसल्ट करे तो आप सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर के विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।